إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے تمام دروس میں اختلاف امت اور اس کا حل اور اسی طرح سے علماء کے مابین اختلاف کے اسباب اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں، یہ دو موضوع ہمارے تھے اور کافی تفصیل سے اس پر ہمارے دروس ہوئے اور اس میں جو بھی چیزیں ہم نے سیکھی اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کا درس میں سمجھتا ہوں اور امید اللہ سے کرتا ہوں کہ یہ آخری درس ہوگا. ویسے پچھلا درس ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بھی طویل ہونے کی وجہ سے ہمارا کورس ختم نہیں ہو پایا. آج کا درس میں کوشش کروں گا کہ آج یہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد امتحان ہوگا، تو جو لوگ امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ آج اپنے نام، جو بھی اپنے اپنے نام ہیں، لکھ کے کون سی زبان میں وہ پرچہ چاہتے ہیں وہ لکھ دیں. نوٹ آپ کو لسٹ ملے گی جس میں آپ کو فل اپ کرنا ہے اپنے اپنے نام، اور امتحان یہی ہوں گے. اتنی کم جگہ میں کاپی نہیں کریں گے آپ لوگ، وہاں کر سکتے ہیں. تو جو لوگ بھی امتحان دینا چاہتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور یہ ہر ایک کے لیے اپنے لیے ذاتی محاسبہ ہے، تاکہ ہم اپنے بارے میں دیکھیں ہم نے اس کورس سے کتنا فائدہ اٹھایا. کسی کو کم مارکس ملتے ہیں کوئی غم کی بات نہیں، کوئی یعنی گھبرانے کی بھی چیز نہیں ہے. اصل امتحان کہاں کا ہے؟ آخرت کا ہے. اصل امتحان اللہ کے ہاں ہے، تو وہاں اگر زیادہ مارکس مل جاتے اور یہاں کم، کوئی مسئلہ نہیں. لکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، عمل کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات آدمی لکھنے میں کمزور ہوتا ہے لیکن عمل کرنے میں مضبوط ہوتا ہے، تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. امتحان میں آپ شریک ہوں، جو بھی آتا ہے لکھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پرچہ اپنا چھپائیں، کسی کو نہیں دکھائیں. جو بھی مارکس ملتے ہیں، کم زیادہ جو بھی ہیں، کوئی اس میں پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹس بھی اس کے ملیں گے، جیسے بھی ہیں وہ سرٹیفکیٹس آپ کو ملیں گے. آپ سنبھال کے اس کو رکھ سکتے، دیکھو میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، میں نے اختلاف کے بارے میں کورس کیا ہوں. تو انشاءاللہ یہ بھی رہے گا اور ممکن ہے انشاءاللہ انعامات بھی اس میں ملیں گے. آپ انعام کے لیے مت پڑھیے، آپ کو انعامات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے. تو بہرحال یہ کورس ہم آج کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے. ایک ہفتہ ہمارا اگلا ہے، اگر آپ چاہیں تو اگلے ہی ہفتے امتحان ہوں گے، نہیں تو ایک ہفتہ آپ کو اور آگے امتحان رکھے جائیں گے. لیکن چاہے کورس ہمارا ختم ہو جائے، اگلا کورس شروع ہونے تک آپ کو چھٹیاں نہیں ملیں گی، یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو جو بھی کورسز ہمارے ہوتے ہیں اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے ایک کورس سے دوسرے کے درمیان، تو اس میں ہمارا درس چلتا رہے گا، کوئی نہ کوئی موضوع اس میں ہم لیں گے. لیکن کورس کے بعد چھٹیاں آپ کو نہیں رہیں گی، کیونکہ چھٹیوں کے بعد اکثر ہوتا ہی ہے ایک دو چھٹیاں ہوگی تو آدمی پھر آنے میں تھوڑا سا کوتاہی کرنا شروع کرتا ہے. تو کنٹینیوٹی رہنے کے لیے ہمارے دروس ہمیشہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے. آخری چیز جو ہم کو اس سلسلے میں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. پچھلے درس میں ہم نے اجتہاد اور مجتہد کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی تھیں. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری علماء سے متعلق کیا ہے، جس کو آپ کہیں کہ علماء کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ علماء کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور علماء امت کی گمراہی کے سلسلے میں محافظ ہیں، کہ امت کے افراد کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. اس کے لیے علماء کا وجود ضروری ہے اور علماء لوگوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں خبردار کرتے ہیں جو عام طور سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. علماء باریکیاں دیکھتے ہیں, تجارت کے مسائل ہیں, عام آدمی ان کو حلال چیز سمجھتا ہے لیکن علماء بتاتے نہیں یہ حرام ہے. بعض چیزیں لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے, علماء بتاتے کہ نہیں یہ حلال ہے. یا اسی طرح سے عقائد کے اعتبار سے مسلمانوں میں کوئی جملہ کوئی عمل شرکیہ کفریہ ہوتا ہے, لوگوں کو احساس اس کا نہیں ہوتا ہے, علماء بتاتے ہیں یہ غلط ہے. ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں, شرک کے معاملات, بدعت کے معاملات, اور اسی طرح سے حلال و حرام کے معاملات, بدعت اور رسم و رواج کے معاملات. ان تمام معاملات میں علماء کا وجود امت کے لیے رحمت ہوتا ہے, لہٰذا ان کا فضل اور ان کی فضیلت امت کے عام افراد پر زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امت کو گمراہی سے بچانے والے ہوتے ہیں, وہ امت کی ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں, وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, کیونکہ انبیاء بھی لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتے ہیں. تو علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہوتی ہے اور انبیاء کے بعد میں. لہذا عام آدمی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے یا دوسرے علاقے کے, اپنے دور کے یا پچھلے دور کے تمام علماء کی قدر کرے, ان کا احترام کرے, ان سے محبت کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں جو علماء کی قدر نہیں کرتا ہے, ان کا احترام نہیں کرتا ہے, کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہے. لیس من امتی, وہ میری امت میں سے نہیں ہے. کون؟ من لم یجل کبیرنا, جو ہمارے بڑے کا اجلال نہ کرے, اس کا جلال, اس کی جلالت, اس کی شان, اس کی عزت, اس کا احترام, اس کا وقار, اس کا مقام نہیں جانتا ہے, جو اس کی عزت نہیں کرتا, اکرام نہیں کرتا ہے, جو میری امت کا کوئی بڑا آدمی ہے. کبیرانہ عمر کے اعتبار سے بڑا, خاندان میں بڑا, سماج کا بڑا, جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے. اور ویرحم صغیرانہ, اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. چھوٹا عمر کے اعتبار سے چھوٹا بچے, یا کوئی غریب آدمی ہے جو مال کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے چھوٹا ہے, تو ایسا آدمی ہے تو ایسے لوگوں پر جو رحم نہیں کرتا ہے. اور وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ, اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ عالم کا بھی امت کے افراد پر کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا, ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا ہے, تو ایسا آدمی میری امت میں سے نہیں ہے. یہ ڈانٹ کے الفاظ ہیں, یہ ایسا فتویٰ نہیں کہ وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے, یہ مطلب نہیں. علماء نے کہا کہ عام طور سے حدیثوں میں جب آتا ہے کہ لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں, فلیس منی, تو اس طرح سے جب الفاظ آتے ہیں تو اس میں ڈانٹ اور دوری کا معاملہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اس کو اسلام سے باہر کر دیا جائے. وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ کامل طور پر امتی نہیں ہے, یہ ناقص امتی ہے. جیسے غصے میں آ کے باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے, یا کوئی دوست اپنے دوست سے کہتا ہے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ تو ہے لیکن آدمی ناراضگی کی وجہ سے اس کو دور کرتا ہے اپنے سے, تو یہ دوری ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ دوری ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کے دائرے سے ہی باہر نکل جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی کامل دور پر کامل درجے میں امتی اور مسلمان نہیں ہے, وہ کچا پکا ہے, وہ پختہ مسلمان نہیں ہے. جو آدمی تین چیزوں کا لحاظ نہ رکھے, نمبر ایک کیا ہے, پہلی چیز کیا ہے اس میں, بڑوں کا اکرام. اس میں ماں باپ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ سب سے پہلے وہی آتے ہیں. تو جو ماں باپ کا اکرام نہیں کرے, چچا, جو بھی بڑے ہیں, دادا, سماج کے بڑے ہیں, جو بھی بزرگ ہیں, عمر دراز لوگ ہیں, جو ان کا اکرام نہیں کرتا ہے. پھر چھوٹے ہیں, عمر کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, کسی اعتبار سے چھوٹے, ان کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے, اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو معلوم یہ کہ علماء کے بارے میں کیا ہونا چاہیے, آدمی عالم کا اپنے اوپر حق سمجھے. اور اس میں سے کیا چیز ہے, اس کا حق کیا ہے, وہ جب صحیح بات بولے تو اس کو مانا جائے, وہ جب غلط بات کہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے لیکن اس سے نرمی کرے, क्योंकि वो बड़ा है, आलिम से भी गलती होती है, आलिम से गलती नहीं होती, ऐसा नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात एक आदमी आलिम की गलती को उसकी बेइज्जती का जरिया और बहाना बना लेता है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी इसलाह की कोशिश की जाए शफ़क़त और महब्बत के साथ में। तो आलिम की सही बात मानी जाए, आलिम की गलती पर उसको मोहलत दी जाए इसलाह के लिए, उसको हमदर्दी के साथ में नसीहत की जाए, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें उलमा ने ज़िक्र की है, उनका एहतराम किया जाए, अदब किया जाए, ताज़ीम की जाए, खिदमत की जाए, उनका लिहाज किया जाए, उनके औकात की यानी का लिहाज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, इंशाल्लाह किसी मुस्तकिल दर्स में इसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है, आलिम का एहतराम इकराम और उसके साथ नरमी का मामला किया जाए, नरमी का मामला किया जाए। ये नहीं कि रात में मसलन 3 बजे आदमी फ़ोन किया, आज साहब भाई क्या है हमारे आराम कभी तो ख्याल कीजिए, बोले आलिम क्यों बने फिर, आलिम क्यों बने? तो आज वही कहेगा आप जालिम क्यों बने भाई, ये वक्त है, आप जाग रहे, आपको नींद नहीं आ रही, आपको मसला पूछना है, आप 3 बजे फोन कर रहे हैं। तो एक आदमी, हाँ कोई रात में जागता हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई आलिम है, उम्र दराज है, दिन भर के थके हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं और उसके बाद में थक हार के निढाल होके सो गए हैं, अभी आंख लगी थी कि फौरन हाँ फोन बजना शुरू हुआ, पूछा तो क्या है, बोले मेरा दिल कर रहा था आपसे बात करने के लिए। तो ऐसा अगर होता है उलमा की तकलीफ का भी लिहाज रखा जाए, ऐसा नहीं हो कि उलमा को आदमी तकलीफ देने वाला बने, या कोई आलिम बात कर रहा है उसको बात ही करने नहीं दे रहा है, उसके बीच में ही अपनी तरफ से कुछ भी बातें कर रहा है, जरा तुम आलिम साहब तुम चुप रहो मैं बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी जज्बा होता है कि आप बैठो मैं बात करता हूँ, तो आलिम साहब के जवाब देने के बजाय एक आदमी जवाब दे तो उनकी शान में क्या है, ये गुस्ताखी है और इल्मी अदब के खिलाफ है। या कोई आलिम है कुछ पढ़ने में गलती कर गया तो फौरन पकड़ लिया गलती किया आपने, आलिम है, बड़े से बड़ा आलिम होता है उससे गलती होती है, बड़े बड़े अइम्मा से रिवायत में उलमा ने कहा ये फलां शोबा की रिवायत है लेकिन ये रिवायत शाज है इसलिए कि शोबा से इसमें गलती हुई, इतना बड़ा इमाम शोबा, बड़े बड़े अइम्मा से रिवायत के अल्फाज में बाज़ वक़्त गलती हो जाती है। ये नहीं कि आदमी फौरन जो है उसको पकड़ ले, कभी कोई आलिम खुतबा देते देते आयत में लफ्ज कोई रह गया, हदीस पढ़ रहे हैं हदीस में कोई लफ्ज आगे पीछे हो गया, तो कोई आदमी जो उसके जहन में बात होती है तो पकड़ा मैंने उसको, अच्छा मौका मिला, अब खुतबे के बाद शामत है आलिम की, खाना भी उसको नसीब नहीं होगा, 4 बजने वाले असर का वक्त आने वाला है, ये लफ्ज ही कैसा पढ़े आपने, गलती गलती मानो अगले खुतबे में बताना पड़ेगा तुमको। ऐसी गलतियां सभी से होती रहती है, तो बाज़ औक़ात आम आदमी आलिम की गलती इल्मी गलती आलिम की इल्मी गलती पर बहुत ज्यादा सख्ती से गिरफ्त करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकराम के साथ शफ़क़त और नरमी और महब्बत और इकराम के साथ इज्जत के साथ में उनकी गलती पर तंबीह की जाए, वो भी इल्म वाला ही सही ढंग से कर सकता है कि एक आलिम की गलती है, पूछा आलिम साहब ये हदीस ऐसी है आपने ऐसी पढ़ी है कहीं दूसरी तरीक में तो ऐसी नहीं आई है, आलिम का ऐसी पढ़ी क्या मैंने, हाँ आपने ऐसी पढ़ी थी, तो कहा नहीं नहीं गलती हुई, पढ़ने में गलती होगी शायद भूल से कुछ मैं आगे पीछे हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, खत्म हो गई बात। ये नहीं कि देखो कैसा आलिम की गलती पकड़ा, आलिम की गलती पकड़ने वाला आलिम नहीं होता है, ये बात भी याद रखिए, क्योंकि छोटी मोटी चीज में भी आलिम से गलती हो सकती है, अब इसको इतना ही आता है बाकी नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी दूर का कुछ पढ़ के आता है, आलिम साहब ने मदरसे के जमाने में पढ़ा था, 10 साल पहले पढ़ा था, अब इसने आज ही पढ़ा है ताजा एकदम गर्मा गर्म, अब इसको शौक आता कि ये बात देखेंगे किसको किसको मालूम है, इल्म भी बहुत खतरनाक चीज है, पेट में गुदगुदी आदमी की शुरू होती, नई नई चीजें जब मालूम पड़ने लगती हैं, सब पे ट्राई करना शुरू करता है डॉक्टर की तरह, जैसे मेंढक पे होता है ना, उससे सब पे ट्राई करता है आदमी, ये नफ्स की तस्कीन है, ये इल्मी खिदमत या इल्मी मशगला नहीं है, आदमी का नफ्स जो है ये लज्जत चाहता है, और आदमी क्या करता है फिर जाके आलिम साहब से पूछेगा, आलिम साहब वो हदीस कैसी जरा पढ़ के सुनाओ, कौन सी हदीस, अरे वो हदीस ऐसी ऐसी है, बोले मुझको याद नहीं, आप आलिम है आपको याद नहीं, देखो जरा मुझको याद है आलिम साहब को याद नहीं, अब जो आलिम साहब को याद है अगर वो तुझसे पूछना शुरू करेंगे तो इसके सिवा कुछ और याद है नहीं, इसका इल्म जजीरा है एकदम, आसपास सब तरफ पानी बीच में जमीन, इतना ही मालूम है उसको, बाकी और मालूम होता है
नहीं।
तो इस तरह से आलिम का बाज़ औक़ात एक आदमी इम्तहान लेकर दूसरों के सामने उसको बेइज्जत करना चाहता है, और बड़े बड़े उलमा को बाज़ औक़ात बात याद नहीं होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने फरमाया कि वो आदमी हम में से नहीं जो आलिम का हक न जाने, आलिम का इकराम करना चाहिए, गलतियों से दरगुजर करना चाहिए, और अगर वाकई इस्लाह तलब चीज़ है खुद इस्लाह करे, या उसकी तरह दूसरा कोई आलिम है उससे इस्लाह करवाए, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। तो मुस्नद अहमद और हाकिम की एक हदीस, हमने ये हदीस देखी, इससे मालूम होता है कि आलिम का हक आम आदमी पर होता है, उसका इकराम करना चाहिए, उलमा की तहकीक से इस्तिफादा भी करना चाहिए, ये नहीं कि आदमी में खुदराई हो। खुदराई किसको कहते हैं, आदमी अपने आप ही को कुछ समझने लगे, नहीं नहीं मुझको ये समझ में आ रहा है यही सही है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आदमी को चाहिए कि वो अपनी राय पर उलमा की राय को तरजीह दे, उनकी बात पूरी तरह से सुने, गौर करे, देखे, मजीद तहकीक करे। बाज़ औक़ात देखने में कोई चीज़ ऐसी लगती है कि मुझको समझ में आ रहा है, दूसरों को नहीं आ रहा है। बाज़ औक़ात क्या होता है, आदमी को ऐसा लगता है इतनी साफ चीज है, किसी को आलिम साहब को एक भी आलिम को समझ में नहीं आ रही, कभी कभी ऐसा होता है, इतनी मोटी चीज है, एक से एक आलिम से मैंने बात किया लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो जरा खतरनाक चीज होती है। क्यों, एक भी आलिम की समझ में नहीं आ रहा है और इसको कुछ भी मालूमात नहीं है, अभी 2 महीने हुए कुरान और सुन्नत पे आके, लेकिन इसकी समझ में आ रहा है और एक भी आलिम की समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ उधर है कि इधर है, गड़बड़ इधर है। वो ऐसे ही जैसे एक आदमी के बदन में सूजन पैदा हो और वो समझने लगे कि एकदम फटाफट हेल्थ बढ़ रही मेरी, तो ये क्या है, ये ऐब है, ये बीमारी है, और वो ये समझ रहा है कि मैं सेहतमंद हो रहा हूं। तो इल्मी एतबार से बाज़ औक़ात एक आदमी ये समझता है कि मैं सही हूं और मैं ही सही हूं और बाकी आलिम बड़े से बड़ा कोई भी वो गलत ही है, ये बहुत बड़ा फितना आदमी के लिए होता है, ये गुमराही का नुक्ता होता है। देखिए ऐसा हो सकता है कि एक आदमी सही हो और किसी आलिम से गलती हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे चांसेस ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं, कम होते हैं कि एक आलिम जो कुरान सुन्नत का माहिर है, उसको कुरान का गहरा इल्म है, हदीस का गहरा इल्म है, वो उसूल जानता है, वो हदीस के उसूल जानता है, वो फिक्र के उसूल जानता है, वो तफसीर जानता है, वो नासिख मनसूख जानता है, ये सब जानने के बाद उससे गलती हो सकती है लेकिन चांसेस कम है कि ज्यादा है। इस आदमी से जिसको उसूल भी मालूम नहीं और तफसीर मालूम नहीं, हदीस मालूम नहीं, फिक्र मालूम नहीं, इससे गलती होने के इम्कान ज्यादा है। जरूरी नहीं कि हमेशा यही गलत होगा, हमेशा आलिम ही सही होगा, जरूरी नहीं, लेकिन अक्सर मौका यही होता है कि उससे गलती इतनी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हो सकती है। अगर उससे गलती हो सकती है, बोले वो इंसान है, उनसे नहीं हो सकती क्या, वो तू फरिश्ता है, तू भी तो इंसान है, तो अगर गलती आलिम से हो सकती है तो गलती गैर आलिम से भी हो सकती है। अब मामला यह कि ज्यादा गलती के चांसेस कहाँ है, एक ऐसा ड्राइवर जो अच्छे से ज्यादा कोर्सेस किया है और सालों से चलाता है, और एक ऐसा जो अभी उसको मालूमात इतनी गाड़ी चलाने की नहीं है, चांसेस ज्यादा किसके हैं, बोले वो भी इंसान है, ये भी इंसान, अरे ठीक है, लेकिन चांसेस तेरे गलती के ज्यादा हैं क्योंकि तुझको तजर्बा ज्यादा नहीं है। तो आलिम का होना उम्मत में, ये उम्मत के लिए खैर है, जब आलिम उठा लिए जाएंगे उम्मत के लिए बर्बादी के औकात आ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। इंतज़ा के माना है ले लेना, नज़ा की हालत है बोलते ना, अभी रूह निकलने में है, नज़ा इंतज़ा। तो इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतज़ाअन, अल्लाह ताला इल्म को कब्ज नहीं करेगा ऐसे कि छीन ले उम्मत में से, कि एक आदमी को याद था और अचानक सारी उम्मत भूल गई कुरान को, हदीस को अचानक भूल गई सब, अरे कहाँ चला गया इल्म, ऐसा नहीं कि सो गया तो सूरे याद थे, उठ गया तो एक भी सूरा याद नहीं, ऐसा नहीं छीनेगा अल्लाह, बल्कि कैसे छीनेगा इल्म को, वलाकिन यक़्बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला इल्म को उठाएगा, लेगा उलमा के उठाने से, एक एक करके उलमा अल्लाह उठाता चला जाएगा, यानी दुनिया से मौत के जरिए से वो रुखसत होते चले जाएंगे और उनके साथ इल्म भी चला जाएगा। हत्ता इदा लम युबकी आलिमन, यहां तक के हाल जब ऐसा होगा कि एक भी आलिम बाकी नहीं रहेगा। इत्तखद अन्नास रुउसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। फसुइलु फअफ्तौ बिगैर इल्म, फिर लोग इन्हीं जाहिलों से सवालात पूछेंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे। फदल्लु व अदल्लु, तो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया और अल्फाज बुखारी के हैं। क्या बात मालूम हुई इस हदीस से, क्या समझ में आया इस हदीस से, क्या मालूम हुआ, कितनी बातें मालूम हुई, ये सवाल है। हाँ बताएंगे उलमा का इंपॉर्टेंस, उलमा की अहमियत इससे मालूम होती, क्या क्या अहमियत मालूम हुई इससे, उलमा इल्म के यानी अंबिया के वारिस हैं। इस हदीस से क्या बात समझ में आई, आप लोग हदीस सुने हैं नहीं, पंखा कितने देख रहे थे मस्जिद में, कौन बताएगा, आप ये सोच के नहीं आए थे ना ऐसा भी होगा, सोचिए। ये हदीस का तर्जमा हुआ, अब इससे क्या फायदा, मतलब क्या समझ में आया, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, उलमा की रहबरी में काम करना चाहिए। देखिए क्या क्या इसमें से समझ में आया। नंबर एक, उलमा का वजूद उम्मत के लिए गुमराही से रुकावट है, क्योंकि गुमराही कब शुरू होगी, पहले या बाद में, हदीस में क्या, हत्ता इदा लम युबकी आलिमन, यहां तक कि जब आलिम बाकी नहीं रहेगा तो क्या होगा, इत्तखद अन्नासु रुउसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाए। अब देखें क्या क्या हदीस में से आता है सामने, मालूम हुआ कि जाहिल सरदार नहीं होता है, जाहिल सरदार नहीं होता है कि एक आदमी, अब देखिए कोई आदमी बोल दे जहालत की बुनियाद पर फैसले करने लगे, मान लीजिए डॉक्टर ही जिसको मालूमात नहीं है मेडिकल फील्ड में, अगर वो आदमी बोले एक काम करेंगे चलो ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर साहब आप बैठो उधर देखो हम लोग कैसा करते हैं ऑपरेशन, चलेगा, और आपका करने लगा तो आप स्ट्रेचर छोड़ के भागेंगे, हाँ वो बेहोश भी किया होगा तो उठ के भागेगा, मैं नहीं रुकता यहाँ पे। तो अगर दीन के मसाइल में जवाब देने वाला अगर जाहिल होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसी एक बात ये मालूम हुई कि सियादत के लिए इल्म जरूरी है। सियादत के माना क्या है, सैयद, रईस, लोगों का निगरान, लोगों के ऊपर सरपरस्त, लोगों का जिम्मेदार, वो कैसा होना चाहिए, इल्म वाला होना चाहिए। अगर वो दीनी मामलात में से, अगर दुनिया मामलात में है तो उस फील्ड का उसको क्या होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। सारे इंजीनियर्स के ऊपर ऐसा आदमी है जिसको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, काम करो ऐसी बनाओ बिल्डिंग, पाया ऐसा खोदो, कुछ भी बोल दिया आपने हिसाब से, ये कलर की ईंट लाओ, हाँ लेकिन कैसी मालूम नहीं उसको, तो अब क्या होगा, इससे इमारत पुख्ता होगी नहीं। मेडिकल फील्ड में कोई इंजीनियर चला जाए बोले काम करो पहली लेयर ऐसी करो उसकी, कुछ भी बोलना शुरू कर देगा, नुकसान होगा। तो दीन के मामलात में قوم کا سید، قوم کا رہبر، قوم کا نگراں، ان کا سرپرست کیسا ہونا چاہیے؟ علم والا ہونا چاہیے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب عالم نہیں ملیں گے تو لوگ کس کو اپنا بڑا بنائیں گے؟ جاہل کو. تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا. کیا نقصان ہوگا اس سے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہل سے نہیں پوچھنا چاہیے. کیا جاہل سے پوچھنا چاہیے؟ وہ لوگ کیوں گمراہ ہوں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پوچھنا کس سے چاہیے؟ علم والے سے پوچھنا چاہیے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. تو جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے. اسی طرح سے یہاں پر آپ نے فرمایا فضلوا واضلوا، تو جاہل جب دین کے مسائل میں بات کرنے لگیں گے اور لوگ ان سے پوچھیں گے اور یہ بولنا شروع کر دیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ پہلے کیا ہوگا؟ فضلوا، خود گمراہ ہوں گے. کیوں گمراہ ہوں گے؟ کیسے گمراہ ہوں گے آپ بتائیے؟ فلم نہ ہونے گی. نہیں، کیسے؟ جواب دینے والے کیسے گمراہ ہوں گے؟ دل سے فتوا دیں گے. یعنی اب لوگ ان کے پاس جائیں گے، آپ پوچھیں گے اس مسئلے میں آپ کا کیا کہنا ہے، وہ سوچیں گے میرا کیا کہنا ہے، میرا کیا کہنا ہے. ایک کام کرو، ایسا کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنے کا وقت ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے کہ لوگ اس کو مرجع ماننے لگے. وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آدمی، ایک آدمی جس کے پاس دین کا علم گہرا نہیں ہے، اب کوئی آدمی ایسے آدمی کے پاس جائے گا، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، چلو جا کے اس سے پوچھیں گے، ایسا ہوتا ہے. اب عالم نہیں ہے اور ایک دم جاہل بھی نہیں ہے، لیکن جاہل کیسا جاہل ہے؟ آدھا جاہل. دیکھیے، جس کو نیم حکیم ہمارے یہاں پر کہتے ہیں، کہ جس کو آدھا معلوم ہے لیکن آدھا مشین کھولنے آتا لیکن واپس سے بند کرنے نہیں آتا ہے. ایسے لوگ جو سماج میں تھوڑے پہچانے جاتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت معلوم ہے، تھوڑا بہت معلوم ہے لیکن پورا معلوم، اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے. تو اب عالم اگر نہیں ہے تو اب پبلک میں جس کو سمجھتے ہیں اس کو معلوم ہوگا، ایسے لوگوں سے لوگ پوچھیں گے. یہ نہیں کہ لوگوں میں معروف ہے کہ یہ جاہل ہے، چلو جا کے جاہل سے پوچھتے ہیں، ایسا ہوگا. یہ جاہل ویسا جاہل نہیں ہوگا. یہ کیسا جاہل ہوگا؟ جہل مرکب. یہ نیم جاہل ہوگا جو لوگوں میں تھوڑا بہت معلومات اس کو ہے لیکن واقعی فتویٰ دینے کی اہلیت اس میں نہیں ہے. دیکھیے، تھوڑا بہت تو سبھی کو معلوم ہوتا ہے، نماز کیسی پڑھنا چاہیے، ایسا پڑھنا چاہیے، لیکن پیش آنے والے مسائل میں غور و فکر کر کے فتویٰ دینا، کیا یہ ہر آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو اب چار پانچ چیزیں ایک آدمی کو معلوم ہے، چلو بھائی ہم لوگوں سے تو زیادہ ان کو معلوم ہے، انہی سے پوچھ لیتے ہیں. تو ایسا ان لوگوں میں کوئی آدمی ہوگا، وہ جا کے کیا کریں گے؟ اس سے پوچھیں گے. اب وہ اپنے طور پر فتویٰ دے گا، تو وہ ایسی چیز میں اجتہاد کرے گا جس میں اس کی اہلیت نہیں ہے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ایسا جواب دینے کی وجہ سے جو قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہے، علم پر مبنی نہیں ہے، یہ گمراہ ہو جائیں گے. اور لوگ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے. یہ جہالت کا نقصان ہے کہ ایک آدمی جہالت کے ساتھ جب دعوتی میدان میں اترتا ہے اور فتویٰ بھی دینے لگتا ہے، لوگوں کا رہبر بنتا ہے، تو دو نقصان ہوتے ہیں. کیا؟ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ. تو جہالت گمراہی کا بیج ہے اور سبب ہے، صحیح ہے؟ جہالت گمراہی کا سبب ہے اور علم سے آدمی گمراہی سے بچتا ہے. اور علم جن کے پاس ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، عالم، یا کئی لوگ ہوں تو علماء. علماء، بہت سارے لوگ علماؤں کہتے ہیں. یہ کون سی جمع ہوئی؟ علماء خود جمع ہیں، علماء کی جمع ہوگی اور علماؤں، تو علماء ہی بولتے ہیں اس کو، علماؤں نہیں بولتے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ علماء سے پوچھنا چاہیے. اسی لیے ہمارا باب کیا ہے؟ علماء کی تحقیق سے استفادہ. یہ نہیں کہ آدمی ہر آدمی سے پوچھے اور آپ کی کیا رائے ہے آپ کی کیا رائے ہے, یہ اوپینین پول وغیرہ کچھ ہے دین کا معاملہ کہ آپ کی رائے بتائیے, نہیں. علماء سے استفادہ کرنا چاہیے, اور ہر آدمی جب دین میں بولنے لگتا ہے تو اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے, عوام گمراہ ہوتی ہے. تو علماء سے استفادہ کرنا چاہیے. جتنے سنگین مسائل ہیں اتنا زیادہ معاملہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم بڑے علماء سے پوچھیں. ہاں چھوٹے موٹے مسائل ہیں ٹھیک ہے, عام علماء سے بھی ہم پوچھتے ہیں, لیکن جتنا زیادہ سیریس دین کا معاملہ ہوتا ہے اتنے مسائل میں اتنے بڑے عالم سے پوچھنا چاہیے. آج تو امت کا حال یہ ہے کہ خاص کر کے امت کے جو مسائل ہیں, دیکھیے یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے, آج بہت سارے امت کے سیاسی مسائل ہیں, ان مسائل میں آج بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں علماء کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے, یہ ماڈرن حالات ہیں اس کے بارے میں ماڈرن لوگوں کو زیادہ معلوم ہے. اس میں علماء تو بیچارے اپنے حجروں میں رہتے ہیں, ان کو دنیا کا کیا معلوم ہے, سیاست میں کیا چل رہا, کون سے ملک میں کیا چل رہا ہے. اس میں جو لوگ سیاست کے میدان میں ہیں, جو انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں, جن کو زیادہ دنیا کی معلومات ہوتی ہے, جو جینٹلمین قسم کے بولنے والے ہیں, ان کو زیادہ معلومات ہوتی ہے, علماء کو نہیں ہوتی ہے. ایسا بہت سارے لوگ آج کل کہنے لگے ہیں اور علماء سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے علماء کو زیادہ معلومات نہیں ہیں, کوئی کہتا ہے کہ عرب علماء کو تو کیا معلوم ہی نہیں, ان کو تو کچھ, ویسے بھی وہ کس کے بکے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کے. جیسے اس نے جا کے بریف کیس یہی لے کے گیا تھا. بات ایک آدمی بغیر علم کے کہے کتنی سخت بات ہے کہ ایک آدمی علماء کے بارے میں اتنی بڑی بات کہے کہ عرب میں جتنے علماء ہیں وہ سب گورنمنٹ کے علماء ہیں. عام طور سے جو لوگ علماء سے کاٹنا چاہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں. ان کو قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا, قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ علماء کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. دیکھیے علماء میں اچھے اور برے دونوں علماء ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے علماء صحیح ایسا ہے نہیں ہے, اچھے علماء بھی ہوتے ہیں, برے علماء بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے پیچھے دوڑ کے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. لیکن ایک آدمی محض اس وجہ سے کہ میرے دل میں یہ بات ہے فلاں عالم اس سے متفق نہیں ہے, پھر اس پر کچھ تہمت لگا دے اور اس کو غلط ثابت کرے, یہ چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے, یہ گھٹیا لوگوں کا طریقہ ہے. صرف اس وجہ سے کہ میری رائے سے فلاں عالم اتفاق نہیں رکھتا ہے, یہ کہے کہ وہ گورنمنٹ کا, سعودی گورنمنٹ کا بکا ہوا عالم ہے, ایسی بات آدمی بولے, اس کو کیا علم ہے, اس نے کیسے جانا, اس نے کیسے جانا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علماء بہت پیشی کے ساتھ میں سوچتے ہیں کہ امت کو ان حالات میں صبر کی تلقین کرنا ضروری ہے. وہ بہت سارے مسائل پر چپ بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ان کے بولنے سے فتنہ ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے. اب یہ آدمی اس کو کیا سمجھتا ہے, بزدلی سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ, اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے, جو امت کے معاملات میں بہادری دکھاتے ہیں وہ گلی کے معاملات میں بزدل ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں. آپ بتائیے اپنے شہر میں وہ آدمی بزدل ہے لیکن انٹرنیشنل معاملات میں بہت بہادر ہے, ایسا ہونا چاہیے, جہاد ہونا چاہیے, حملے کرنا چاہیے, بم بناؤ, کچھ تو کرو, ہوائی جہاز خریدو, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اس کی اپنی گلی میں ایک لڑکی کو لڑکا چھیڑ رہا ہے, اس کو روکنے کی طاقت اس میں نہیں ہے. ہے مسلمان بچی جا رہی برقع پہن کے, اس کو کوئی اگر چھیڑتا ہے یہ دیکھ کے, بھائی ہو کہاں جھگڑا مولنے کا, بھائی پوری چوکی میں معاملہ جائے گا, ایسا ہوگا, چلو اپنا کک مارو, نکلو یہاں سے. کتنے کالجز ہیں, کتنے چوراہے ہیں, اس پہ مسلمان کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی آپس میں مار پیٹ کر رہا ہے, کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے, کوئی لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, کچھ کیا نہیں ہو رہا ہے. اس کو روکنے والے ہیں یہ, کون سی دنیا میں حکومت قائم کرنا چاہتے آپ؟ اپنی گلی میں غیر اسلامی چیزوں کو جو آدمی بند نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں بند کرنے کی بات کریں, جھوٹ بولتا ہے یہ. آپ چھوٹے میں نہیں کر پا رہے, آپ مینڈک پہ آپریشن آپ کا فیل ہو رہا, آپ انسان پہ آپریشن کرنا چاہتے, سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جو چھوٹے میں ناکام ہے وہ بڑے, اس کو گلاس دیے تو اٹھانے نہیں آ رہا, اس کو دیگ اٹھانے لگائیں گے آپ, इसको ग्लास नहीं आता, ये बहुत कमजोर है, देख उठा भाई, उठाएगा हो। जो छोटे में फेल है वो बड़े में पास होगा। इसलिए आज इस दौर में बहुत सारे लोग उम्मत के मसायल पर बोलने के चैंपियन बने हुए हैं। क्यों? उससे शोहरत बहुत आसानी से मिलती है, बहुत आसानी से फेमस हो जाता, वर्सटाइल है एकदम, ये एकदम ग्लोरियस शख्सियत है, ये बड़ी बड़ी बातें बोलता है, ये चैलेंज करता है अमरीका को, ये चैलेंज करता है फुलाने को, ये चैलेंज करता है फुलाने को। यहाँ से बैठ के सबको चैलेंज करना और वो भी यूट्यूब से बहुत आसान है, कोई सेंसर उसका है, कुछ भी बोल सकता है आदमी, पब्लिक भी बोलती क्या खोल के बोलता है, ये बहुत बहादुर है। शेख बिन बाज हल्के फुलके लोग हैं, इनमें हिम्मत ही कहाँ है। शेख हुसैमीन हिम्मत नहीं, शेख रबी, शेख सालेल फौजान के हिम्मत वाले लोग नहीं है। ये क्या हिम्मत वाला है, इसको चैलेंज करता है, कभी उसको चैलेंज करता है, करने का जब वक्त आता है कोई कुछ करता है। तो आज बहुत सारे लोग अल्फाज के बहादुर बने हुए हैं, और इससे ज्यादा बढ़ के बात यह होती है कि वो लोग बड़े बड़े उलमा को भी गलत कहते हैं। ये जहालत है। बहुत सारे मुल्कों की जो दुर्गत बनी हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ा सबब ऐसे ही लोगों का रहा जिन्होंने लोगों को वरगलाया और ऐसी चीजें करने पर डाला। आज बहुत सारे लोग बोल रहे वो पहले उसकी हुकूमत अच्छी थी, अब जो हालात पैदा हुए वो और भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। कई मुल्कों में ऐसा हो रहा है, कोई हुकूमत बदल के उससे अच्छी हुकूमत आती नहीं, उससे ज्यादा बुरी हुकूमत आती। आप दुनिया भर के हालात देखें, बहुत सारे लोग बोले ना ये अच्छे हालात बदल रहे हैं, अभी बहुत अच्छे हालात आएंगे, कुछ अच्छे हालात आते नहीं, पहले से ज्यादा बुरे हालात आते हैं। तो ऐसे जितने जेंटलमैन हैं आप उन लोगों से बचें, जो भोले भाले सीधे वो इमामा बांधे हुए जुब्बा पहने वो आलिम वहीं उनको पकड़ के रखें, जो हमारे रिवायती आलिम जो हैं, जो रिवायती आलिम हैं, जो कुरान और सुन्नत के उलमा हैं, ये चाहे आपको बुजदिल दिखाई दें, चाहे ये आउटडेटेड आपको दिखाई दें, इस्लाम के आलिम हैं वो कुरान और सुन्नत के आलिम हैं। कुरान और सुन्नत कभी आउटडेट होने वाला नहीं है। ये YouTube वाले, Facebook वाले, Twitter वाले, ये Twitter ही हैं। कुरान और सुन्नत के उलमा ही उलमा है, इसको हमेशा याद रखिए। कुरान और सुन्नत का जो गहरा इल्म नहीं रखता है, आज भी आप देखें इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की 6 जिल्दों में किताब है, आज ईसाइयों के ऊपर उनकी जो किताब है वही मास्टरपीस है, उसी में मवाद आपको मिलेगा। बाद वाले कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से भी टकराती, क्यों? उनके पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, गहरा तफक्को उनके पास नहीं है। इसलिए यहां बचने की कोशिश करेगा तो यहां एक्सीडेंट होगा, यहां बचने की कोशिश करेगा यहां एक्सीडेंट होगा उसका। लेकिन जो कुरान और सुन्नत का माहिर है उसको दूसरा मालूम अगर कुछ नहीं भी है, अगर ऐसे मसाइल में वो बोलना शुरू करेगा तो बराबर बोलेगा। क्यों? इसलिए कि उसको मालूम है ये दो लकीरों के बीच में चलना है, वो बराबर लेन का कायदा पकड़ के चलेगा, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसलिए याद रखें ये ऐसा दौर है कि इसमें सुनने वालों से ज्यादा बोलने वाले हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसको इमाम मालिक ने रिवायत किया मौकूफन, और दूसरों ने इसको इमाम तबरानी वगैरह ने मरफूअन भी रिवायत किया है, और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ वो रिवायत आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का भी कौल यह है कि तुम ऐसे दौर में हो, इसको याद रखिए, तुम एक ऐसे दौर में हो जिसमें खुतबा कम हैं, फुकहा ज्यादा हैं। खुतबा खुतबा देने वाले, बयान देने वाले, लेक्चर देने वाले कम हैं, लेकिन फुकहा दीन की गहरी समझ रखने वाले, बारीकी के साथ मसाइल में फर्क करने वाले, दीन के मसाइल को जज करने वाले, कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात करने वाले, ये ज्यादा हैं। लेकिन बयान करने वाले कम, यानी चुप रहने वाले ज्यादा, इल्म रह के भी चुप रहने वाले हैं, बोलने वाले कम हैं, और सवाल पूछने वाले कम हैं, जवाब देने वाले ज्यादा हैं। यानी इतने लोग हैं कि अगर एक आदमी सवाल पूछे तो जवाब देने वाले बहुत हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको पूछने की जरूरत पड़ती, क्योंकि अक्सर लोगों के पास इल्म है, पूछने वाले कम हैं, जवाब देने वाले ज्यादा हैं। लेकिन अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें बयान करने वाले ज्यादा होंगे लेकिन दीन का गहरा इल्म रखने वाले कम होंगे। और उसमें पूछने वाले ज्यादा होंगे और उसमें जानने वाले जवाब देने वाले कम होंगे। तो ये कैसा दौर है? ये वही दौर है। हर आदमी जिसके पास वेबकैम है वो शेखुल शेख यूट्यूब हो गया है, लगा दिया, थोड़ा सेट कर दिया, हाँ 1080 चलो ठीक है, HD है, अपलोड कर दो, 5 मिनट में अपलोड हो जाता है, क्योंकि उसके पास इंटरनेट की स्पीड ज्यादा है, उसके पास इल्म कम है लेकिन वसायल टेक्नोलॉजी ज्यादा है। बड़े बड़े उलमा हैं, उनका कुछ भी नहीं इंटरनेट पे, कम है, किताबें उनकी हैं, उनकी खुतबात दुरूस वगैरह हैं, क्योंकि वो वीडियो के जमाने के नहीं है। अब वीडियो का जमाना आया, अब ये आदमी इसकी वीडियो शेख बिन बाज से भी ज्यादा, तो इसका इल्म उनसे ज्यादा है। इमाम बुखारी का तो ऑडियो भी नहीं है, ऑडियो क्या इमाम बुखारी से ज्यादा इल्म इसका
नहीं।
तो आज शोहरत जिसके पास वसायल ज्यादा हैं, उसके पास शोहरत ज्यादा है, पब्लिक उसी को पहचान रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ग्लिटर जो भी है, इस पर आदमी फेमस हो रहा है और पब्लिक को भी मजा आ रहा है। याद रखिए, वो आदमी 4 कदम चलेगा उसके बाद ठोकर खाएगा, और अकेला नहीं खाएगा, जितनों को गोद में लेके जा रहा है सबको लेके गिरेगा। इसलिए याद रखें, शोहरत नहीं सेहत, उलमा से मरबूत रहना। वो बेचारे कोने में कहीं तो दुनिया में रहते लेकिन वो इल्म वाले होते हैं, उनको पकड़ के चलना। किबार उलमा जितने भी हैं उनसे ताल्लुक कता नहीं करना, सिर्फ इस वजह से ये सोच के अपने दिल में इनको क्या मालूम दुनिया के बारे में, वो तो फुला जगह रहते कोने में रहते कहीं तो भी नहीं, उनको सब मालूम होता है क्योंकि उनको जिम्मेदारी का एहसास होता है, इसलिए बराबर देखते रहते दुनिया में क्या चल रहा है। और फिर उस वक्त अगर वो कहते हैं थोड़ा सब्र करो, तो पब्लिक नौजवान को क्या लगता है, बुजदिल है, बुजदिल नहीं है, मार खा के चुप बैठने से अच्छा है मार खाए बगैर चुप बैठना, है कि नहीं है, बहुत ज्यादा बहादुर है। कोई आदमी है बस्ती में सता रहा है लोगों को, अब ये बहादुर है जाके उससे क्या है, उसने 2-3 इसको दिया, हाँ क्या है भाई, ऐसे ही पूछने आया था मैं, क्या है, करो ना करो पार्किंग करो यहाँ पे, कौन मना किया आपको, अब क्या हुआ, अब बैठा ना चुप। तो जलील होकर चुप बैठने से अच्छा है जलील है बगैर आदमी चुप बैठे, बस यही फर्क है। उलमा बताते हैं जलील होके मार खा के पिट पिटा के कपड़े अपने फाड़ के चुप बैठने से अच्छा पहले चुप बैठ, इज्जत से चुप बैठना या जलील होकर चुप बैठना, दो में चॉइस है। लेकिन जो आदमी अकलमंद होता है वो इज्जत से चुप बैठता है, जो बहादुर होता है सिर्फ वो क्या करता है, मार खा के चुप बैठता हो। तो ऐसी बहादुरी कोई काम की नहीं जिसके पीछे अकलमंदी की लगाम ना हो। और बहुत सारे लोग जो अपनी पर्सनल लाइफ में अकलमंद होते हैं उम्मत के मामलात में बहादुर बन जाते हैं, चलो जाएंगे वहां पे कमिश्नर ऑफिस पे पूरा नारे लगाएंगे, और अपने मामलात में वो एकदम ठंडा होता है, अरे नहीं अपना बिजनेस खराब होगा, अरे कस्टमर है अपना ही, इसको सख्ती से नहीं बोलना चाहिए, इसको नरम बोलना चाहिए, फिर वो किसी भी दीन धर्म का कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल दिया तो भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उम्मत के मामलात में अरे ऐसा कैसा बर्दाश्त करने का, अच्छा तो पूरी उम्मत को डाल देगा गढ़े में, उम्मत का नुकसान फसाद और नुकसान सब चल जाएगा तुझको। अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा करेंगे तो अरे पुलिस आएगी। तो दुकान और मकान के मामलात में आदमी अक्सर औकात बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन उम्मत को झोंकने में वो, उम्मत ही तो जाएगी ना, अपना क्या जाने वाला है उसमें। उलमा क्या करते हैं, उलमा उम्मत को बचाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उम्मत का नुकसान नहीं होना चाहिए, मुल्क में हालात खराब होंगे, शहर में हालात खराब होंगे, नहीं ठहरो ठहरो बस चुप बैठो कुछ मत बोलो। लेकिन एक जाहिल आदमी क्या समझता है, लोग बुजदिल हैं, बुजदिल हैं। तो एक ऐसा दौर है कि जिसमें उलमा की नाकदरी हो रही है, और जो गैर उलमा हैं जो इल्म नहीं रखते हैं उन लोगों के सिलसिले में समझते हैं कि ये ज्यादा बोलना आता है, इसको ज्यादा बोलता है तो ये क्या है, बड़ा आलिम है, ये नहीं होना चाहिए। उलमा से मरबूत रहें, और जो दुआत उलमा की रहबरी में काम करें बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं करें कि यानी मुस्तकिल उसके पास सनद ही होना चाहिए, उलमा की तरफ से उसको इजाजत होना चाहिए, हाँ बेटा काम कर। तो फिर वो उलमा से मरबूत है और हर मसले में उलमा से पूछ रहा है और काम कर रहा है दावत का, बहुत अच्छी बात है, कम उम्र भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होना चाहिए, उलमा की रहबरी में। और जितना बोलने की सलाहियत है उतने ही मसाइल में बोले, ये नहीं कि मशहूर होने के, अक्सर होता ये है आदमी पहले शुरू करता कहां से, गैर मुस्लिमों में काम शुरू करता, थोड़ा कुरान दे ये कर वो कर, ठीक है वहां से थोड़ा सा कुछ लोग बोलते जरा समझाओ, इसको भी समझाना शुरू करता है, फिर बोले थोड़ा एक आपका स्पीच रखेंगे, थोड़ा एक स्पीच भी उसकी हो जाती है, उसके बाद फिर क्या होता है इसका यूट्यूब बन जाता, फिर पहले एक यूट्यूब व्हाट्सएप पे आता, फिर उसके बाद एक चैनल बनता उसका, फिर उसके बाद सिर्फ उसको उस मसले में नहीं पूछते, उसके बाद किस मसले में पूछते हैं कि फुला मुल्क के हालात हैं क्या करना चाहिए मुसलमानों में, वो बोलता फुला मसले में उम्मत में ऐसा करना चाहिए, बगैर इल्म के वो अपनी तरफ से बोलने वाला बनता है। ये इस दौर का बहुत बड़ा मसला है। मैं उन लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं जो किसी न किसी एतबार से गली में बस्ती में इलाके में काम कर रहे हैं दावती, इसके लिए आलिम होना जरूरी नहीं है। शेख हुसैन ने भी इस सिलसिले में क्या कहा, एक आदमी अगर दावत देता है किसी को उसको आलिम होने की जरूरत नहीं, आलिम नहीं हुआ तो भी चलता है, लेकिन जिसका इल्म नहीं है, जिस मामले में उसको इल्म नहीं है, वो उस मामले में बोलने लगे सिर्फ इस वजह से कि मैं आज फेमस हो चुका हूं, और वो बहुत सख्त वक्त होता है कि लोग समझ रहे हैं अरे इनको मालूम होगा चलो इनसे पूछते हैं, अब आए जरा इस मसले में कुछ बताइए, अब ये सोचता मैं अगर बोलूंगा भाई मुझको इस मसले में मालूम नहीं, तो बोलूंगा आपको मालूम नहीं, आपको नहीं मालूम, तो वो जो टाइम होता है बहुत भारी होता है, जो आदमी उसको पार कर गया नहीं मालूम तो नहीं मालूम, लेकिन आदमी कैसा सोचता है, वो अपनी लाइल्मी का इकरार करने से डरता है लेकिन जहालत का अमल करने से नहीं डरता। बगैर इल्म के बोलना खुद जहालत है, बगैर इल्म के बोलना खुद जहालत है, ये अल्लाह के सामने जहालत है, लेकिन आदमी बंदों के सामने अपनी जहालत का इकरार करने से डरता है कि मैं इतना फेमस हो चुका हूं और इतना मोटा मसला नहीं मालूम, तो फिर क्या करता है वो उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ शायद ऐसा है, जहन में तो नहीं लेकिन ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऐसा करके जवाब दे देता है और वो बहुत बड़ी गलती होती है। फिर उसके पीछे 1,000 आदमी 500 आदमी अमल करना शुरू करते हैं, और सबका गुनाह किस पर आता है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए और सवालात पूछे, ये सवाल 2, 3, 4 कई सवालात पूछे, और उन्होंने कई सवालात के जवाब में कहा ला अदरी, नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम, 36 सवालात नहीं मालूम 40 में से। अब उन्होंने बोला हम इतने दूर से आए, लोगों ने हमको भेजा आपसे पूछने के लिए, अब उनको जाके क्या बताना हमने, नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम, जब आप इतने बड़े इमाम हैं आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, हम आपसे पूछने के लिए आप लोगों पब्लिक हमको भेजी इतने, इससे सबको तैयार करके जाओ पूछ के आओ, तो अपनी कौम में जाके हम क्या बताएं, कहा जाके उनसे कहो मालिक ने अपनी जहालत का इकरार कर लिया, यानी ये नहीं कि अब तुम ठीक है ठीक अच्छा अच्छा बैठो बैठो अब थोड़ा बना के बोलता हूं तुमको, दूर से आए क्या तुम लोग, अच्छा पहले बताना था, यानी पहले नहीं मालूम था तो अब मालूम पड़ जाएगा, नहीं मालूम का मतलब नहीं मालूम, चाहे दूर से आओ नजदीक से आओ बहुत जरूरी है बहुत, नहीं मालूम का मतलब नहीं मालूम, वैसे ही जैसे कोई आदमी किसी मैकेनिक के पास जाए बोले गाड़ी बनाने नहीं आती, अरे भाई मेरे को सफर पे जाना है पहुंचना है जल्दी, ऐसा है क्या, ठीक है खोला, अरे गाड़ी नहीं चालू हो रही, पहले बोला था ना नहीं मालूम, तो बोला बहुत दूर से आया इसने मैंने बना दिया, अब ब्रेक दबा रहे तो गाड़ी आगे जा रही, एक्सीलेटर दबा रहे तो पीछे आ रही, तो नहीं मालूम का मतलब नहीं, वो आदमी जो नहीं मालूम नहीं बोल सकता उसको कुछ नहीं मालूम, उसको खुद कुछ नहीं मालूम है, उसको नहीं मालूम है कि ये बोलने की चीज है, ये खुद इल्म का एक बहुत अहम बाब है कि एक आदमी जब नहीं मालूम तो बोले कि नहीं, और ये वाकई आलिम ही बोलता है। ये जो जुमला है, ये वाकई आलिम जो होता है वही बोलता है नहीं मालूम। जो आदमी नीम आलिम होता है वो कभी नहीं मालूम नहीं बोलता। जिसको आधा आलिम बोलते हैं, आधा आलिम क्या होता है? आधा आप ऐसा बोलो या ऐसा बोलो उसको, वो कभी नहीं मालूम नहीं बोलता है। बल्कि वो आलिम अगर बोले नहीं मालूम तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं एक बात करूं आलिम साहब, मैं बोलूं इसमें कुछ, तो वो अपनी तरफ से कुछ तो इश्तियात करके बोलता है। इस दौर का बहुत बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग तरजीह दिए जाते हैं उलमा के मुकाबले में जो वाकई तरजीह दिए जाने लायक नहीं होते हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा फितना ये है। हम हमेशा जो बड़े बड़े उलमा हैं उम्मत के, चाहे माजी के हों चाहे आज के हों, हम हमेशा अपनी निगाहें उनकी तरफ रखे हैं। ये नहीं कि यहाँ वहाँ ग्लिटर, थोड़ा सा लाइटिंग यहाँ ज्यादा है। शेख अल्बानी के पास ज्यादा लाइटिंग नहीं है, इनके पास बहुत लाइटिंग है, हरी रंग की भी लाइट इनके पास। इनका स्टेज बहुत बड़ा है, इनका ये बहुत बड़ा है, इनका चैनल बहुत बड़ा है, इनके पास देखो कितना टिप टॉप है एकदम, इंग्लिश भी आती इनको। अब एक आदमी उनके पीछे दौड़ना शुरू करे कभी नहीं होना चाहिए। दावत देने का हक हर आदमी को है और हर आदमी अपनी खिदमत के बकद अल्लाह के यहाँ अजर का हकदार बनेगा, चाहे वो कितना ही छोटा आदमी क्यों ना हो। थोड़ा सा आता उसको, उसको उसका सवाब मिलेगा। लेकिन एक आदमी जिसको इल्म कम है उसको बड़ा बनाकर उलमा को आदमी इनकार करना शुरू कर दे, खुसूसन उम्मत के मसाइल में, सियासी मामलात में भी, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कदम उठाने पे हलाकत आ सकती है। ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। और आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं उलमा को नहीं देखना, अपने को उलमा को क्या मालूम है भाई, उलमा ठीक है, तहारत के, नमाज के मसाइल, तलाक, निकाह, ये मसाइल इसमें उलमा, लेकिन जो बड़े मसाइल है सियासत के, ये बहुत गहराई से इसको देखना पड़ता है, इसको दीन भी मालूम होना चाहिए, दुनिया भी मालूम होना चाहिए, ऐसा आदमी इसमें बात कर सकता है, उलमा नहीं। तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी लोगों को गुमराही की तरफ ले जा रहा है, हमेशा याद रखिए इसको। तो उलमा से हमेशा आदमी मरबूत रहे, बड़े उलमा से, किबार उलमा से हमेशा मरबूत रहे। देखिए वो क्या बोलते हैं इन मसाइल में, चुन्नू गुड्डू मुन्नू इनकी बातें सुन के आदमी दीन के मसाइल, उम्मत के मसाइल हल करे। बड़े उलमा को देखना चाहिए कि वो आलमी सतह पर जो लोग निगरानी करते हैं, मामलात का शऊर रखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं ये देखना चाहिए। बहरहाल तो आपने ही कहा कि जब एक एक करके उलमा दुनिया से उठते चले जाएंगे, जाहिलों को लोग अपना सरदार बनाएंगे, उनसे पूछेंगे और वो बगैर इनके जवाब देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इसी तरह से पिछले दर्स में हमने देखा था आलिम के सिलसिले में कि आलिम इश्तिहाद में गलती कर सकता है, लिहाजा उसको पकड़ के जलील करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि आलिम की इश्तिहादी गलती पर अल्लाह के यहाँ उसको एक अजर मिलता है। अगर किसी आलिम से, बड़े इमाम से अगर किसी इल्मी कोई खता सामने आ जाए तो उनके लिए उज़्र रखना चाहिए कि अल्लाह से उम्मीद रखें कि उस पर उनको क्या मिलेगा, अजर मिलेगा, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके उल्टा एक दूसरी चीज़ ये भी है कि एक आदमी ये करे कि उलमा की गलती को भी सीने से लगाए और मानने को तैयार ही ना हो कि ये गलती है, ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम है। एक तो ये कि एक आदमी आलिम की गलती पर उसको पूरा ही गुमराह साबित करने की कोशिश करे जबकि वो एक इश्तियादी गलती हो। दूसरा उसका एक्सट्रीम, दूसरी जानिब उसकी ये है और गुलू उसमें ये है, इफरात और तफरीत ये है कि एक आदमी आलिम की गलती को भी कहे, इतने बड़े आलिम है कह सके गलती हो सकती उनसे, उनसे गलती हो ही नहीं सकती, या अगर गलती भी हुई है ना उनको एक अजर मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, तो गलती पर भी अजर होता है तो हमको भी मिलेगा। आदमी आलिम की गलती को मानने के लिए तैयार ना हो। अक्सर मुकल्लिदीन हजरात में बीमारी पाई जाती है, बजाय इसके कि वो किसी आलिम की गलती को कबूल करें, हाँ ठीक है हो सकता है गलती हुई और हदीस ऐसी है, कुरान ऐसा है, अल्लाह और उसके रसूल की बात से उनकी बात टकरा रही है, सहाबा के भी फतवे हैं जो इनके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है भाई आलिम की बात गलती है, अच्छे आलिम थे लेकिन गलती कर गए, लेकिन ये बात कुरान और सुन्नत से टकराती, इसलिए हमको कुरान और सुन्नत मानना चाहिए। ये जो बड़ा जिगर है बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं और तासुब की चादर ओढ़ के सो जाते हैं गफलत की नींद, और कोई चादर खींचने की कोशिश करे तो उसको भी घोंसे मारना शुरू करते हैं। यही हाल होता है कि कोई आदमी बताए भाई ये आलिम साहब ने ऐसा ऐसा फतवा दिया है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात से उनकी बात टकराती है, कहे नहीं हम तो वही करेंगे जो हमारे आलिम ने कहा है। अरे मुफ्ती हैं वो, मुफ्ती हैं और उसके साथ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी कुछ किए उन्होंने, अब उनकी बात कभी गलत नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग गलती वाज़े होने के बाद भी उसको कबूल नहीं करते हैं। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है, दोनों के दरमियान होना चाहिए। आलिम की इज्तिहादी गलती पर हम उसको उसके साथ बदजन ना हो, उसकी शान में गुस्ताखी ना करें और उसको पूरा गुमराह साबित करने पर दरपे न हो जाए। दो, आलिम से अगर वाकई गलती साबित हो जाए तो ज़बरदस्ती उसकी तरफदारी न करें, ज़बरदस्ती गलती को सही साबित करने की कोशिश न करें। कुरान और सुन्नत असल हमारे लिए रहनुमा है, कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करें चाहे बड़े से बड़ा आलिम क्यों ना हो। ये दोनों के बीच में हमको चलना चाहिए। इसीलिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, अस्सुन्नतु मा सन्नहु अल्लाह व रसूलुहु, सुन्नत वही है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने राइज किया है। चलने का तरीका जिसको आप कहें, जिसको फॉलो करना चाहिए, वो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने तय किया है। दीन वही है। ला तजअलु खता अर्रई सुन्नतन लिल उम्मा, राय की गलती को, किसी की राय की गलती को तुम उम्मत के लिए राइज तरीका या सुन्नत न करार दे दो। किसी की मिस्टेक है, पूरी उम्मत को उस पर चलाओ मत, क्योंकि चलने का रास्ता कौन सा है जिसको अल्लाह उसके रसूल ने करार दिया कि ये रास्ता है जिस पर चलना चाहिए। तो तुम किसी की इज्तिहादी गलती है, जबरदस्ती पूरी उम्मत को उस पर मत चलाओ। ये किसका कौल है? उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला का कौल है, और जाम बयान इल्म में इब्न अब्दुल बर ने इसको जिक्र किया है सनद के साथ में, और इलामुल मुअक्किन में भी इब्न क़य्यिम ने इसको जिक्र किया है। तो बहरहाल ये उलमा के सिलसिले में हमारी जिम्मेदारी हमने देखी, उलमा का एहतराम करें, उनका ताउन करें। जैसे एक आलिम है मसलन, उसको कोई किताब है पढ़ना है, उसको फलां लाइब्रेरी में है, वो जा रहा ठहरो जरा बैठो मैं लेके आता हूँ, अरे आप बैठिए मैं लेके आता हूँ। तो एक आदमी उलमा की खिदमत करे, इसकी किताब लाने पर भी उसको सवाब मिलेगा। तो ये सलफ में हमको मिलता है कि उलमा की खिदमत करना, उनका इकराम करना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे अच्छा गुमान रखना, उनसे अच्छा गुमान रखना और उनकी गलतियों पर तंबीह करना, लेकिन उनके एहतराम और वक़ार का लिहाज करते हुए। ये सारी चीज़ें हैं, इसका ख्याल हमको रखना चाहिए। चारों इमाम या इनके अलावा जितने भी उलमा किराम गुजरे हैं, मुहद्दिसीन, फुकहा, जो भी हैं, मुफस्सिरीन हैं और भी हैं, इनके सिलसिले में आदमी बदगुमान ना हो, उनकी शान में गुस्ताखी ना करे, उनकी नाकदरी ना करे, उनकी खिदमात को बेकीमत साबित ना करे, बल्कि हर एक का जो भी हक है उसको दे, जिसका जितना हक है उसको दे, जो जितने एहतराम का मुस्तहिक है उसको उतना एहतराम दे, उनके मरातिब के एतबार से उनका इकराम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी बातें इस कोर्स में, इन दुरूस में कही गई, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाएं और हम सबकी हिदायत का जरिया बनाएं। अगर कोई बात उसमें ऐसी थी जो इस्लाह तलब थी तो अल्लाह ताला इस्लाह के रास्ते खोले, और अगर कोई गलती उसमें थी तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अकूल क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम।